मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। EFEIS के आज 17 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, तो पहले मैं वो सूचनाएं आपको दे देता हूं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको कल यानी कि शनिवार को एज इट इज़ मिलेंगी जैसे कि वो मिलती रहती हैं। और इसके साथ ही योजना के और कुरुक्षेत्र के आपको आर्टिकल मिलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। प्रैक्टिस के लिए आपको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ती है, आज भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार मेल पर स्टूडेंट इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं प्लीज उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दें, अगर आंसर नहीं तो कम से कम उसके कुछ बिंदु प्रोवाइड कर दें ताकि हम समझ सकें कि इसके आंसर में ये बातें लिखी होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों की शिक्षा को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और उसका रीजन ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि रीजन यह है कि मैं नहीं चाहता कि मैं करूं। मैं इसे आपका अपना विशेषाधिकार मानता हूं, आपका प्रिविलेज मानता हूं, आपके प्रिविलेज को मुझे छीनना नहीं चाहिए। आपको खुद इसके लिए बिंदु तलाश करने होंगे क्योंकि तभी तो आपकी सही मायने में प्रैक्टिस होगी। तो इसके लिए जितनी भी जद्दोजहद आपको करनी पड़े प्लीज करिए, तभी आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी और आपकी अपनी ही बढ़ी हुई क्षमताएं आपको सिविल सर्विस के फाइनल लिस्ट में स्थान दिला सकेंगी। और इसके साथ ही हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं, और मुख्य विषय के तहत हम लोग वैश्विक तापन वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए इससे जो जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है हरित गैस। हरित गैस जिसे आप ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। पहली बात तो यह है कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हरित गृह गैसेस हैं ये पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं और ये नेचुरल तरीके से रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम ही इसे उत्सर्जित करते हैं, हम ही इसे उत्पन्न करते हैं, ये प्रकृति में ऑलरेडी रहती हैं और हमारे इस पूरे की पूरी पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रहती हैं। जैसे कंबल में आप किसी को लपेट दीजिए तो लपेटे रहती हैं। जब हम आज हरित गैसेस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी दुश्मन है। नो डाउट कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा हो जाए वो दुश्मन ही हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हरित गैसेस होती हैं और बकायदे हमारे पृथ्वी के तापमान को एक स्तर तक बनाए रखने में हमारी बहुत मदद करती हैं। देखिए जो सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं वो किसी माध्यम से पहुंचती हैं, तो हरित गैसेस से होकर के वो बकायदे हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जब ये परावर्तित होती हैं तो ये जो हरित गैसेस हैं इनको रोक लेती हैं, परावर्तित नहीं होने देती, मतलब वापस नहीं जाने देती। तो हमारा ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के आसपास का ये गर्म बना रहता है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे कंबल है ना, वो कंबल अंदर की गर्मी को रोके रखती है। कल्पना करके देखिए कि आप उस कंबल को निकाल दें तो जो गर्मी स्टोर हो रही है वो तो ऊपर चली जाएगी तो ठंड बढ़ेगी। कहा जाता है कि यदि ये ग्रीन हाउस गैसेस न हो तो जो पृथ्वी का आप एवरेज टेम्परेचर कह लीजिए वो -18 डिग्री हो जाएगा। -18 डिग्री आप सोच सकते हैं, ठंड के दिन है आपको अनुमान होगा कि -18 डिग्री कितना होता है, जबकि ये जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो हमारी पृथ्वी के तापमान को बकायदे लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखती हैं और ये हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा जो अभी चल रहा है वहां से जो हरित गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा वे गैसेज उत्सर्जित होने लगी हैं। अब सवाल यह है कि इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आपको अखबारों में भी पढ़ने को मिलेगा तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अच्छा ये गैस फलानी गैस है। तो जो हरित गैसेस हैं उनकी वैसे तो संख्या लगभग 30 के करीब है, 30 है, लेकिन जिसके कारण परेशानियां पैदा हो रही हैं उनमें 3-4 सबसे महत्वपूर्ण गैसेज हैं। उसमें एक है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप CO2 के नाम से जानते हैं, खासकर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उन्हें यह शब्द याद कर लेना चाहिए, CO2 ये उसका समीकरण वाला रूप है, संक्षिप्त रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हैं कि जब आप बाइक चलाते हैं धुआं निकलता है, गाड़ियां चल रही हैं धुआं निकल रहा है, उद्योग बन लगे हुए हैं वो धुआं निकाल रहे हैं, बिजली बन रही है कोयले से धुआं निकल रहे, तो जितना भी ये सब जीवाश्म ईंधन वगैरह लकड़ियां जल रही हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कि अगर वो एक बार प्रकृति में चली गई तो फिर वो खत्म नहीं होगी, वो एक ही तरह से एक नेचुरल साइकिल की तरह ही वो खत्म हो सकती है। कैसे नेचुरल साइकिल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम उनके द्वारा दिए गए ऑक्सीजन को लेते हैं और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो हम छोड़ते हैं उसे वो लेते हैं। तो ये साइकिल हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित किया जा सकता है, एकमात्र तरीका है, अदरवाइज वो प्रकृति में पता लगा कि बनी हुई रहेगी। और दुर्भाग्य से जो हरित गैसेस की जो समस्या है जो अभी हम देख रहे हैं, उसमें जो 60% कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का है। इसीलिए आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे या किताबों में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब भी हरित गैसेस की बात होती है, या इसके बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है और जो दूसरी संधियां हुई हैं, उनमें ये कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम किया जाए। मतलब मेन वही है, दूसरे गैसेस को भी कम करने की बात होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम किया जाए, क्योंकि 60% रोल इसका है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको कार्बन क्रेडिट शब्द मिलेगा, कार्बन क्रेडिट यानी कि कार्बन की खरीदी बिक्री हो रही है। खैर, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर पाऊंगा, बाद में कभी अवसर हुआ तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अब आप देखिए कि बेसिकली वो कार्बन क्रेडिट क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही संबंधित, हालांकि उससे जब संबंधित दूसरी गैसेज भी हैं जो हरित गैसेज हैं, लेकिन नाम क्या दे दिया गया है, कार्बन क्रेडिट, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरी गैसेज हैं फ्रेंड्स, आपने मीथेन का नाम सुना होगा, मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट खासकर हरित गैस है, इसका भी काफी बड़ा रोल, यूं कह लीजिए कि लगभग 20% रोल, सेकेंड नंबर पर यही आता है मीथेन। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इस गैस का नाम आपको पढ़ने को ज्यादा मिलता होगा, हाइड्रोफ्लोकार्बन। तो इस तरह से कुछ और गैसेस हैं जो मिलकर के हमारे पूरे के पूरे वैश्विक तापन को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये थोड़ी सी मैंने बहुत ही बेसिक जानकारी आपको हरित गैसेस के बारे में दी है, ताकि जब आप पढ़ें तो उन्हें आप वैज्ञानिक रूप से समझ सकें। अब मैं दो पॉइंट आपके सामने और रखना चाहूंगा, दो पॉइंट खासकर ये वो पॉइंट हैं जो अक्सर आपको अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, तो आपके दिमाग में अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। एक शब्द आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा, आईपीसीसी। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। तो दोस्तों, ये जो आईपीसीसी है, इसके बारे में दो तीन तथ्य आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होने चाहिए। पहला तो यह है कि ये जलवायु परिवर्तन से जो कुछ भी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो लोग अपने अपने तरीके से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी समीक्षाएं कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो भी मूल्यांकन होती हैं, जो भी समीक्षाएं होती हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, चाहे वो आर्थिक मूल्यांकन हो, सामाजिक मूल्यांकन हो, कोई भी मूल्यांकन हो, तो ये संस्था बकायदे उन जो कुछ भी उसके सामने डेटा वगैरह आते हैं, तथ्य आते हैं, उनको रिव्यू करती है, उनकी समीक्षा करती है। बस याद रखिए, ये खुद में मूल्यांकन नहीं करती, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। प्री एग्जाम में यहां उलझाया गया है कि एक साल, ये खुद मूल्यांकन नहीं करती, खुद निगरानी नहीं करती, खुद फील्ड में नहीं जाती, कुछ नहीं। जो चीजें इसके सामने आ रही हैं वह उनको रिव्यू करती, उनकी समीक्षा करती है, और रिव्यू करने के बाद अपनी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखती है, और इसकी रिपोर्ट को बहुत वैल्यू दी जाती है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। और याद रखिए कि जो इसकी स्थापना हुई है वो दो संस्थाओं ने मिलकर की थी, एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, यह शब्द भी आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, और दूसरी संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं WMO। अब एक तथ्य मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो ये कि दोस्तों एक संगठन के बारे में आपको और बार बार पढ़ने को मिलेगा, मिला ही होगा, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसके बारे में अब जो मैं तथ्य बताने जा रहा हूं, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर आकर के अक्सर उलझ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो द जनेरियो, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है ये रियो द जनेरियो। वहां खासकर पर्यावरण और विकास पर एक सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन का जो टाइटल था पर्यावरण एवं विकास, ये यूएनओ के द्वारा किया गया था, है ना, मतलब आप कह लीजिए कि वैश्विक सम्मेलन था, जिसे आप पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसे आप रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन में 3 समझौते हुए थे। जब हम कन्वेंशन कहते हैं, यहां जो कन्वेंशन है ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो कन्वेंशन का मतलब भी समझौते से ही है। तो यहां 3 समझौते हुए थे इस सम्मेलन में। इन 3 समझौतों को ध्यान से सुन लीजिए और दिमाग में रट करके रख लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज्ड होते चले जाएंगे। पहला हुआ था जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वैश्विक तापन, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा कारण है वह है वातावरण में बढ़ता हुआ तापमान, वैश्विक तापन, यानी कि जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा संबंध वैश्विक तापन से है। तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात आएगी तो अक्सर इसका नाम आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा हुआ था जैव विविधता पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी बकायदे आपके सिलेबस में है। और तीसरा है मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 समझौते हुए थे। अभी हमारे भारत में ही नोएडा में एक मरुस्थलीकरण को लेकर के एक सम्मेलन हुआ ना, वो खासकर कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन का ही अगला सम्मेलन था, मतलब लगातार इस तरह के सम्मेलन होते रहते हैं। तो दोस्तों ये 3 सम्मेलन हुए हैं और इनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी इसलिए है, यानी कि 3 समझौते हुए, क्योंकि ये तीनों आपके सिलेबस के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो दोस्तों अब समय मुझे जितनी इजाजत दे रहा था उतनी बातें ही मैं आपके सामने रख सका हूँ। हालांकि इस विषय पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, की जानी ही चाहिए, लेकिन चूंकि यह फोरम अब मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही है, आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ दोस्तों, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त भी चाहता हूँ। 2 दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी और इस पर हम लोग फिर बातें करेंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।